ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी गीत सुन रहे थे कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। सब कुछ करने के बावजूद भी तुम गुमनाम क्यों रहता है कि आज मनुष्य तेरे नाम पर झगड़ा करते हैं, तू समझदार हो करके भी अनजान क्यों है। कितने सारे प्रश्न थे और शायद आज हर मनुष्य के मन में भी ये सारे प्रश्न हैं ईश्वर के बारे में। बहुत सुंदर दृष्टांत भी हमारे सारिका बहन ने बताया कि हरेक ने अपने अपने आप में एक मान्यता के आधार पर ईश्वर की प्रतिमा बनाई और जिसकी पूजा करने लग पड़ा। आज सचमुच इतने सारे भगवान कैसे हो गए और उसमें से भी सत्य क्या है? जब कहा जाता है कि ईश्वर एक है वो सत्य है। सत्य हमेशा एक होता है। 10 बातें हमारे सामने हो और सभी सत्य हो ये संभव नहीं है। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी, वहां एक बहन ने मुझे कहा कि मेरा बेटा 17 साल का है और वो मुझे सवाल पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो मां उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि बेटे हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहते है सारे भगवान तो नहीं हो सकते, भगवान तो एक होना चाहिए। और अगर ये सारे भगवान हैं, तो इन सब का हेड कौन है? वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसलिए जब भी वो मां अपने बच्चे से कहती है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, त्योहार होता है, तो कि बेटा मंदिर चलो, तो बच्चा मना कर देता है और यही कहता है कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई कॉन्सेंट्रेट माई माइंड। और इसलिए वो बच्चे को लगता है कि मंदिर जाना माना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरा मन तो लगता नहीं है तो मैं क्यों जाऊं, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। और उसके लिए वो मां को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक बनता जा रहा है। ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आज मैं आप सबसे यही सवाल करूं कि मान लो कि कल को आपका बेटा आपसे पूछे या आपका पोता आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन में गॉड, मुसलमानों के सामने अल्लाह क्यों है, तो क्या उसका जवाब आपके पास है? और अगर उसको आपने भी सेटिस्फाई नहीं किया और उसने भी मंदिर जाना छोड़ दिया, तो क्या आपको दुख होगा? कहने का भावार्थ कि आज की जेनरेशन उस समय जैसी नहीं है कि जब हमारे मां बाप ने हमसे कहा ये सारे भगवान हैं, सबको पूजा करो, हमने बिना क्वेश्चन कर लिया। लेकिन आज की जेनरेशन हर बात में एक सवाल पूछती है और अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो वो उस चीज के पीछे अपना टाइम वेस्ट करने जैसा महसूस करते हैं। इसलिए हमें जानने की आवश्यकता है कि सत्य क्या है। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें दिखाया था कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उस न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था कण कण में व्यापक है कहां नहीं है, पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हैं सब परमात्मा के रूप है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच ईश्वर है तो कैन यू प्रूव इट? अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, सत्य किसको कहा जाता है, व्हाट इज ट्रुथ? क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो समझ ही नहीं पा रहे थे? आपका विवेक क्या कहता है, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? क्योंकि सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे, क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? नहीं वो तो बराबर है, वो कौन है, इसमें से सत्य क्या है या कुछ और है? माना ये दूसरे इष्ट देव परमात्मा नहीं है ना, कितना कंफ्यूजिंग है। ईश्वर को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है आज। हाँ जी, तो बाकी सब गलत है, तो इष्ट देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, मैं ये माइक की पूजा भी कर सकती हूँ ना, मैं ना कर सकती हूँ ना, यही मैं तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है ना मुझे, मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छा, नहीं तो मैं समझती हूँ ये बिलीफ सिर्फ आपकी है या सबकी है? तो भगवान ईश्वर तो एक है ना, वो सत्य है, तो सबकी बिलीफ एक जैसी होनी चाहिए ना। अच्छा मैं आपको बताती हूँ ये कंफ्यूजन क्यों हुआ। वो कहानी आपने सुनी होंगी कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर लिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या है, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है, सभी को मिला के सत्य बनता है या सत्य कुछ और है जिसको देख नहीं पा रहे थे? आज खंभे को दीवार को सबको मिला दो हाथी बन जाएगा? खंभे को दीवार को रस्सी को सांप को मिला दो हाथी बन जाएगा? सत्य कुछ और है। ईश्वर के बारे में भी कहीं सत्य कुछ और तो नहीं है। इसलिए कहा कि जो भी सवाल मैं पूछूं ना, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, है ना, क्योंकि कहीं आप अपने ही बात में फंस न जाओ। ये कंफ्यूजन भी क्यों हुआ, ये कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये पांचों सुरदासों को कहा जाता है कि छठा सुरदास दूर बैठा है, उसको जाकर आपको बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये पांचों सुरदास जाते हैं उस छठे सुरदास के पास, जिसने तो फील भी नहीं किया है, और वन बाय वन जाकर के उसको बताते हैं। एक ने कहा खंभे जैसा है, दूसरे ने कहा दीवार जैसा है, तीसरे ने कहा रस्सी जैसा है, चौथे ने कहा सांप जैसा है, पांचवे ने कहा सूप जैसा है। ये पांचों की बातें सुन करके ये छठा सुरदास क्या समझेगा कि हाथी कैसा है, कितना कंफ्यूज्ड होगा कि ये एक एक आता है, उन्होंने फील भी किया है और उसके बाद भी हर एक अपनी अपनी बात कह रहा है, फिर भी वो विश्वास कर लेता कि इन्होंने तो फील किया है ना, सो आई शुड बिलीव देम। हो सकता है कि ऐसा कोई प्राणी हो जो हर बार अपना स्वरूप बदल देता है, बहुरूपिया हो, जैसे आपने कहा ईश्वर बहुरूपिया है, विश्वास कर लिया। अब ये छठे सुरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सुरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर तुम्हें बताना है कि हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन ये भी, गए उस सातवें सुरदास के पास और छठा सुरदास उसको कहता है कि देख भाई, एक ऐसा प्राणी है, मैंने तो फील नहीं किया है, लेकिन मेरे से पहले पांच लोगों ने फील किया है और उन्होंने जो आकर मुझे बताया है वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, हर बार अपना स्वरूप बदल देता है, कभी तो खंभे जैसा हो जाता है, कभी तो दीवार जैसा हो जाता है, कभी रस्सी जैसा हो जाता है, कभी सांप जैसा हो जाता है, कभी सूप जैसा हो जाता है। ये सातवां सुरदास सुनने के बाद क्या कहेगा, क्या कहेगा, मानेगा, कहेगा बकवास, ऐसा कोई प्राणी होता है और तुमने विश्वास कर लिया, हाउ कैन यू बिलीव दिस कि वो हर बार अपना रूप बदली करता है, ऐसा कोई प्राणी हो सकता है क्या, और वो उसको रिजेक्ट कर देता है। आई डोंट बिलीव दिस, कैन यू प्रूव इट। आज यही हाल कहीं हम मनुष्यों का तो नहीं हो गए हैं, ज्ञान के दिव्य चक्षु किसी के पास नहीं है और इसीलिए आज संसार में हर मनुष्य सुरदास है। हमारे ऋषि मुनियों ने शायद अपनी तपस्या के शक्ति से महसूस किया हो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, उसको फील किया हो, अनुभव किया हो। उन्होंने आकर के मनुष्य को बताया, आम व्यक्ति को बताया कि भाई देखो भगवान ऐसा है, किसी ने कहा प्रकृति जैसा है, किसी ने कहा आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने कहा सर्वव्यापी है, कण कण में है, कहां नहीं है, किसी ने कहा निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, किसी ने कहा साकार है, किसी ने कहा है ही नहीं। मनुष्य ने फिर भी विश्वास कर लिया कि भई इन्होंने तो फील किया, अनुभव किया, वो गलत तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन वही मनुष्य जब आज की जनरेशन को बताने जाते हैं ये सारे भगवान हैं, निराकार भी है तो साकार भी है, तो ब्रह्म भी है, तो कण कण में भी है, तो प्रकृति भी है, तो सभी ईश्वर है। आज की जनरेशन क्या कहती है? बकवास। भगवान एक है, एक बात करो आप, कहती है कि नहीं कहती है? या कहेंगी कैन यू प्रूव इट, कैन यू प्रूव इट, ईश्वर को आप प्रूव कर सकते हो? और वहां आज का माता पिता भी मौन हो जाता है या कह देता है ये बच्चे नास्तिक है, इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, खुद की क्षमता नहीं है, अपनी असमर्थी नहीं महसूस करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, इनके दिमाग ही ऐसे हैं जो इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने एक और बात कही कि हमें उसको मानना है, नहीं, हम आपको एक और मत नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी मतें हैं, ऑलरेडी आप इतने कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी दे रहे हैं, जिस कसौटी पर आप अपनी मत को कसकर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। कब तक जीवन को इन्हीं उलझनों में खत्म करते रहेंगे और कहीं अंतिम पड़ाव में आकर महसूस हो कि अब तक हमने समय बर्बाद ही किया, ईश्वर को तो पहचान भी नहीं सके। ये कसौटी है पांच बातें, और उसमें सबसे पहली बात है कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। दूसरा, ईश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, इज द अल्टीमेट, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, उसका कोई शिक्षक नहीं हो सकता, उसका कोई रक्षक नहीं हो सकता, उसको कहेंगे परमेश्वर, सर्वोच्च शक्ति जिसके ऊपर कोई नहीं है। तीसरा, ईश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्मा इस संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, ईश्वर इन सभी चक्र से ऊपर है, पर है, न जन्म है न मृत्यु है, अजन्मा है, अकाल मूरत है, जिसको काल नहीं खा सकते, जिसको न जन्म है तो देह भी नहीं है, न देह के संबंध है, अब देह ही नहीं है तो न कर्म है न कर्म का फल है, अकर्ता भोक्ता, जब कर्म ही नहीं है तो न पाप है न पुण्य है, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप न सुख है न दुख है। जो इन सभी चक्र से परे हैं उसको कहेंगे परमात्मा, परमेश्वर। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ हो, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के तीनों कालों का ज्ञान है, जो मनुष्य आत्मा को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत है, सर्व शक्तिमान है, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिख के, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, उसको कहेंगे परमेश्वर। ये पांच बातें हैं कसौटी। अब इस कसौटी पर कसकर देखते हैं एक एक मत को कि जब हम कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति ईश्वर है तो क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? नहीं करेंगे। क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है। अब सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है, उस चित्रकार का चित्र है कहना सत्य है, रचना है कहना सत्य है? सभी स्वीकार करते इस बात को, रचना नहीं है, रचना नहीं है, ये रचयिता है। क्या कहेंगे? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? रचना है कहना सत्य है। मैं नहीं कह रही, आप सब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, मैंने एक सवाल पूछा, दोनों सवाल रखे सामने। आपका विवेक किस बात को स्वीकार करता है? इस कसौटी पर कस कर देख लो, जवाब मिल जाएगा। अंधश्रद्धा में अभी ज्यादा समय नहीं बिताओ, बहुत समय निकाल दिया। सत्य ये है प्रकृति परमेश्वर की रचना है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, दूसरी बात जब कहते आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर भगवान के मंदिर में जाकर के हम ये क्यों गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे? सत्य क्या है? हम ही मात पिता है या उस मात पिता की संतान है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? संतान है कहना, पहले अंश की बात छोड़ो, आत्मा परमात्मा का, आत्मा ही परमात्मा है कहना सत्य या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? संतान है कहना सत्य है। क्लियर है ये बात आपके दिमाग में या नहीं? संतान है। अच्छा, आगे बढ़ते, कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे ना तो हम परमात्मा बन सकते हैं। देखो, परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूं, कोई ऐसा स्टेटस या पोजीशन नहीं है जो मैं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लूं। इस संसार में मनुष्य कोई भी डिग्री को प्राप्त कर सकता है, है ना? लेकिन कोई भी व्यक्ति खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है। पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, पिता जैसा बन करके छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, लेकिन जब वो अपने पिता के सामने जाता है तब बच्चा ही रहेगा। वहां तक के छोटे भाई बहने भी जब प्रॉपर्टी का मामला आता है तो क्या कहते हैं? आप हमारे पिता समान हो, लेकिन पिता बनने की कोशिश मत करना। कहते कि नहीं कहते? मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, कर्म से, उस टाइटल को प्राप्त कर लेंगे। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा एक भी नहीं है। पुण्य आत्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा देव परमात्मा भी नहीं कहा। और भारत में देव आत्माएं भी कितने हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं, सब देव आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं है। गॉड इज वन, परमात्मा एक है। कई बार कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ी परमात्मा है, उसके टुकड़े टुकड़े होकर के अंश होकर के हम नीचे आए संसार में, और फिर जाकर के उसमें मिल जाना है, समा जाना है, लीन हो जाना है और परमात्मा बन जाएंगे। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है। मैटर मैटर में समा सकता है, लेकिन आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है। इसलिए ये एग्जाम्पल देना ही गलत है। पहली इस बात में, सागर में जब बुदबुदा समा जाता है तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, वो सागर बन गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा। जबकि आत्मा के लिए गीता में यही कहा गया है, आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है। आप स्वीकार करते? Yes. आत्मा अजर अमर अविनाशी, यानी अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का विनाश नहीं हो सकता है। तो उसके टुकड़े कैसे होंगे, अंश बनकर के कैसे निकलेंगे या उसमें लीन कैसे हो जाएंगे, जब उसका अस्तित्व का विनाश ही नहीं होता है। इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कहा जाता है आत्मा को, इसीलिए एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो न उसका टुकड़ा होता है, न वो जाकर के मिलेगा। एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो आत्मा भी कन्वर्ट होती है, पापात्मा भी बनती है, पुण्य आत्मा भी बनती है, ये सब बनती है, दिव्य आत्मा भी बनती है, कन्वर्ट जरूर होती है, लेकिन परमात्मा नहीं बनती है, परमात्मा नहीं बन सकती है। ईश्वर इतना तो अधिकार अपना रखता है, अगर ये सारे को परमात्मा बना दे ना, तो उसके उसका जो अस्तित्व का रहना चाहिए वो रहेगा नहीं। बाप अपने हाथ में कुछ सत्ता तो रखता है, सारी सत्ताएं सारा अधिकार बच्चों को नहीं दे देता है, अगर दे दिया तो बाप का अस्तित्व ही क्या करेंगे, गायब, रहेगा ही नहीं। तो ईश्वर इतना तो अपने हाथ में रखता है, नहीं तो कौन उसको मानेगा, ठीक है कि नहीं। बाद में पूछना, पहले शायद आपका उत्तर मिल ही जाए आपको। तो इस बात को आपने स्वीकार किया कि आत्मा एक शक्ति है जो अजर अमर अविनाशी है, जो उस परमात्मा में मिलती नहीं है, लेकिन उसके संतान जरूर है। यस, संतान है, इसीलिए कि जैसे आजकल बापू गांधी कहते हैं ना, कैसे बापू हो गए, बस आज एक मेयर को भी या नगर बापू कहते हैं ना, तो परम पिता को भी परम पिता इसीलिए कहा। आत्मा का अस्तित्व, आत्मा को एक एक को बैठ के रचा नहीं है, वो तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत शक्ति है, लेकिन उन सब का ऊपर वो एक परम आत्मा है, इसीलिए उसको पिता का टाइटल दिया गया है। ठीक है, तो कहने का भावार्थ, आत्मा सो परमात्मा कहना ठीक है या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना ठीक है? क्या कहेंगे आपका विवेक? संतान है कहना ठीक है? आत्मा परमात्मा का अंश है कहना ठीक है या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना ठीक है? हम वंश है, अंश नहीं है, टुकड़े नहीं है, टुकड़ा होता ही नहीं है, इसलिए हम वंश जरूर है, उसके संतान जरूर है, आदर्श है, उस कारण से हम उसके संतान जरूर है। तो क्लियर है ये बात, आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, अब ये कहां तक सत्य है? अज्ञान तक के कारण हम दो दो बातें करते रहे, प्रकृति ही परमेश्वर है कहा, परमेश्वर की रचना है ये भी कहा, दो बातें कही, आत्मा सो परमात्मा भी कहा, आत्मा परमात्मा की संतान भी कहा। इसी तरह यहां भी हम दो बातें करते हैं कि ब्रह्म ईश्वर है ये भी कहते हैं, तो मनुष्य भजनों में गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, पार जो पांच तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म महतत्व जो है उसमें रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। जैसे एक है मकान मालिक, मकान मकान मालिक नहीं है, मकान में रहने वाला मकान मालिक है। इसी तरह पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, जिसको लोगों ने अनेक नामों से जाना, किसी ने परमधाम कहा, किसी ने मोक्षधाम कहा, किसी ने सचखंड कहा, किसी ने रूहानी दुनिया कहा, किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा, जहां आत्माएं और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। चौथी बात, जहां हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है? अब ये कितना सत्य है? क्या सब में परमात्मा है? कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? नहीं। तब मनुष्य क्या कहते हैं कि नहीं, सभी प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अगर सभी में आत्मा भी है और परमात्मा बाजू में बैठा है, तो एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का कर्म है। अगर ये कर्म आत्मा का है, तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या परमात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? आज घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप सामने बैठे होते हैं, अगर बच्चे किसी बात को लेकर के झगड़ा करना शुरू करे, लड़े, माँ बाप देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे, क्या करेंगे? कि उसका कर्म वो जाने कह करके छोड़ देंगे आप? क्यों नहीं, वो भी माता पिता है। अगर परमात्मा को भी माता पिता माना है और वो सबके अंदर बैठा है और वो कुछ कहे ही नहीं, तो उसका बैठने का मतलब क्या है? दूसरी बात, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी, पहले मुझे सारा एक्सप्लेन कर लेने दो, इस बात को मैं स्पष्ट कर लेती हूं, फिर आपसे पूछूंगी लास्ट में। कि आज घर में कहा जैसे माता पिता है, बच्चों को छुड़ाते हैं। अच्छा, कोई आकर आपसे कोई बात पूछता है, आपको पता नहीं होती है, तो आप क्या कहेंगे? अरे ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो। कहते हैं ना, कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने। ये ऊपर वाला कौन है फिर, जो हमेशा हमारे मुख से निकला ऊपर वाला? ये ऊपर वाला कौन है फिर, और नीचे वाला कौन है? सब में व्यापक है, ये भी नहीं कहा कि जो सब में बैठा है वो जाने। ऊपर वाला जाने, उसकी महिमा में गाया, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, गाई है ये गीत, ये महिमा। गीता के महावाक्य के अंदर चौथे अध्याय में जब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, एक वायदा दिया है कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और एक सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। अगर ये वायदा है तो इसका मतलब नहीं है तभी तो अधर्म हुआ। अगर वो यही है और उसके होते इतना अधर्म हो तो फिर कौन आएगा, कौन आएगा? और इसके होते इतना अधर्म कैसे? आज प्रकृति के अंदर भी ये विशेषता है कि प्रकृति के संग में अगर कोई भी चीज आती है तो संग का रंग लगता है। लोहे को अग्नि के संग में रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा कि एकदम लाल और गर्म हो जाता है, संग का रंग। अगर ईश्वर सर्व गुणों में अनंत है और वो हम सब में व्यापक है और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा हो सकता है? पारस है जिसको कहा जाता है, और पारस के संग में हम बैठे और हम लोहे के रोहे रह जाए, जंक वाले पारस न बन सके, तब फिर बात आती है, आपकी बात अभी आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही आई है। क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र भी गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्र में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही नहीं। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र कैसे लिखे? जब वो समाधि अवस्था में बैठते थे और उस समय जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था उसके आधार पर शास्त्र लिखे गए थे। और उस समाधि अवस्था में जब वो समय को देखते थे और उस समय में भी कली काल को देखते थे कि जब उन्होंने देखा कि मनुष्य घोर पाप कर्म कर रहा है, मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने ये बात शास्त्र में लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य एक डर महसूस करे कि ईश्वर मुझे देख रहा है तो पाप कर्म न करे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाता है, जाना चाहता है, और उस समय मां को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं रास्ते पर ना निकल जाए घुटना करते हुए। तो मां क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाती है और कहती है देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा, गाय उठा के ले जाएगी। एक डर बिठाया ताकि बच्चा सुरक्षित रहे, क्योंकि उसके दिल में सुरक्षा पहली चीज है बच्चे की। ये नहीं कह सकते कि मां ने झूठ क्यों बोला, झूठ नहीं बोला, सुरक्षा के लिए, उस बच्चे को बचाने के लिए। शायद आपने भी अपने बच्चे को यह कहा होगा कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, गाय उठा के ले जाएगी, कहा होगा ना। लेकिन वही बच्चा, वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है और कुत्ते और गाय को देखता है तो क्या करता है, अंदर आ जाता है और खुश होता है और अपनी मां से जैसे व्यक्त करता है कि आई एम सेफ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं यही। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गए तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा, हंसेगा अपनी मां पर कि मेरी मां भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है। और हंसते हुए निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं लेके आया। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन हम बड़े कब होंगे, हमें भी ऋषि मुनियों ने जब ये डर बिठाया कि देख मानव तुम पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान सब जगह देख रहा है। और तब मनुष्य पाप नहीं करता था, आज से 50 साल पहले जब उसको कोई प्रेरित करता था पाप करने के लिए भी तो क्या कह देता था, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मना कर देता था, ईश्वर का डर रहता था उसको। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए जब उसको कोई याद भी दिलाता है क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, क्या कहता है, हम एक ऐसी पैराडॉक्स वाली लाइफ जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि जो हम मान रहे हैं वो कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वही हम मानते हैं। इसलिए कहा आज जब कोई कहता है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग बोलता है, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, कहता है कि नहीं कहता है। अब सत्य क्या है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जो व्यक्ति ये मानता हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है उससे कभी कोई गलत काम हो सकता है, जो स्वीकार करता हो कि भगवान मुझे देख रहा है उससे कभी कोई पाप कर्म हो सकता है, और जो कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है इसका मतलब उसने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, अब बताओ ईश्वर सर्वव्यापी है या नहीं है, आप मानते हैं या नहीं है? मानते हैं, क्यों चुप हो गए, मानते हैं इसका मतलब आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया। जब आप मानते हैं तो आपसे गलत काम कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब तो नहीं मानते हैं ना, इसका मतलब तो नहीं मानते हैं ना कि ईश्वर मुझे देख रहा है। कहने का भावार्थ यही है कि जब आपको मानना नहीं है तो वाई एडवोकेट, वाई एडवोकेट, या तो आप उस चीज को पालन करो और फिर एडवोकेट करो कि हाँ ईश्वर सर्वव्यापी है, वो देख रहा है। जब आपको स्वीकार नहीं करना है, आपको पाप कर्म करते जाना है, फिर एडवोकेट किस बात का, ये तो एक पैराडॉक्स है, आप एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। और इसीलिए शायद कल को आपके बच्चे के, आपके पोते भी आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कहेंगे आप दोहरी बातें कर रहे हैं, आप जो मानते हैं वो आप कर नहीं रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूं सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, हम उस बात को स्वीकार करते हैं। क्या आज अगर हम बाहर जा रहे हैं और कोई हमें पूछता है बहन जी आप अकेले जा रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं भगवान मेरे साथ है। इस भावना को लेकर चलो, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। लेकिन ये मान लेना कि ये माइक में परमात्मा इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करो, भावना को लेकर चलो, जीवन में सदा सुरक्षित रहेंगे। और यही शास्त्रों ने कहा है। शास्त्रों में जो ऋषि मुनियों का भाव था वो यही भाव था कि इस भावना को लेकर चलो जीवन में और गलत काम नहीं करो, बाकी अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करो कि सब चीजों में भगवान है इसलिए बैठ के सबकी पूजा करते रहो। किस किस की पूजा करते रहेंगे आप? इसलिए ये भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। Any questions? Yes. इसीलिए कहा एक भाव था, भाव था कि ईश्वर रक्षक है, वो अपने भगवान की अपने भक्तों की रक्षा किसी भी स्वरूप से करेंगे। आप उस भावना को लेकर चलो, प्रहलाद ये भावना को लेकर चला था कि भगवान मेरे साथ है और उसने कोई गलत काम नहीं किया और इसीलिए उसकी विजयी हुई। यही शास्त्र कहना चाहते हैं कि इस भाव को लेकर चलो, कोई गलत काम नहीं करो, नहीं तो आपका गलत काम ही आपका विनाश का कारण बन सकता है। कोई भगवान को खंभे से प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिरण्यकश्यप का गलत कार्य ही उसका सर्वनाश का कारण बना। रावण का गलत कार्य ही अपना सर्वनाश का कारण बना। ऐसे आप भी अगर ये दोहरी जिंदगी जिएंगे कि एक तरफ पाप भी करते चलो और कहो भगवान सब में है, तो वही आपका विनाश का कारण बनेगा। कोई ऐसे खंभे से प्रकट होने की ईश्वर को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका कर्म ही आपका विनाश का कारण बनेगा। ये शास्त्र का भाव है, ताकि मनुष्य अच्छे कर्म करे, ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए उसको साथ लेकर के चले, ये भाव है। इसलिए कहा ये भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। ईश्वर अनुभव करा सकता है, इसके पास इतनी क्षमता है, शक्ति है, लेकिन अगर जो गलत कर्म करता है और फिर कहे मुझे ईश्वर अनुभव कराए, कभी नहीं कराएगा, कभी नहीं कराएगा। इसलिए तय हमें करना है कि हमें प्रहलाद बनना है या हिरण्यकश्यप बनना है, क्या बनना है। भाव को लेकर चलना है या भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करना है, या सब में भगवान या खंभे में भगवान है निकाल कर दिखा दो, ये कहने वाला हिरण्यकश्यप था, है ना। इसलिए इस मान्यता को लेकर चलना कि मेरे में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, सब में भगवान है, ये हिरण्यकश्यप की बात है, ये शास्त्र ने नहीं सिखाया है। इसलिए कहा शास्त्र के भाव को कहीं हमने समझा ही नहीं है। हाँ, शास्त्र क्या कहना चाहते हैं? क्लियर? आगे बढ़े। कर्म थियरी आपको बताई जाएगी, कर्म का सिद्धांत भी शायद आपके लेसन में है, सारी कबीन कॉल ऑफ टाइम में, नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट सेशन जो है कॉल ऑफ टाइम में आपको उस बात को, क्योंकि कर्म फिलॉसफी बहुत अलग विषय है और बहुत गहरा है, उसको अगर यहाँ क्लियर करने जाएंगे तो ये टॉपिक ही रह जाएंगे और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, निराकार माना जिसका कोई आकार ही न हो, ऐसी कोई चीज इस संसार में है? हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना है और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है और शांत प्रकृति दिखानी है तो भी दिखा सकता है कि जैसे एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, एकदम शांत प्रकृति, पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखाई देता है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में ढाल देता है तो नाम रूप आकार बिना कोई चीज है इस संसार में? ईश्वर को निराकार किस भाव से कहा गया है? जैसे ईश्वर को निर्गुण भी कहते हैं, अगर उसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो निर्गुण माना जिसमें कोई गुण नहीं, और वो तो गुणों में अनंत है, तो फिर निर्गुण किस भाव से कहा गया? निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का भाव ये है कि प्रकृति के तीनों गुण सात्विक राजसिक तामसिक, इन गुणों से ईश्वर परे है, उस अर्थ में कहा निर्गुण, लेकिन वो गुणों में अनंत है। इसी तरह निराकार माना जिसकी आकृति मनुष्य जैसी नहीं है लेकिन उसका अपना रूप तो है, वो कौन सा रूप है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता, आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति स्वरूप है। अब उसके साथ ये पांचों बातें लगती है। इस बात को हम देखें कि जिसको हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा की, ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति, लिंग माना आकृति। जैसे ग्रामर के अंदर शब्दों के लिए, लिटरेचर में शब्दों के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग माना जाता है, यानी स्त्री का आकार पुरुष का आकार, तो ज्योतिर्लिंग माना जो ज्योति की आकृति। ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए भारतवासियों ने एक आकृति दे दी जिस पर अपनी भावनाओं को अर्पित कर सकते हैं, और उसको कहा ज्योतिर्लिंगम, जिसका नाम दिया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले हैं। शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति का सागर, शिव माना ज्योति। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते हैं, किसी का नाम होगा शांति भाई लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी। किसी का नाम होगा अमीर चंद लेकिन होगा फकीर चंद, है ना? किसी का नाम होगा त्रिलोक चंद और झोपड़ा भी नहीं होगा, घर भी नहीं होगा, त्रिलोक चंद। आजकल तो लोगों ने देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर रख दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, शंकर भाई, गणेश जी, है ना? और वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो डबल नाम चाहिए, राधेश्याम, सीताराम, गौरी शंकर, है ना? और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम मिलेंगे, शिवा रामा कृष्णा, क्वालिटीज एक की भी नहीं होंगी, और शिवा रामा कृष्णा। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है लेकिन ईश्वर के नाम भी गुणवाचक है, उसके मंदिरों के नाम भी गुणवाचक है। भारत में इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है। मनुष्य जब भी चार धाम की यात्रा पर जाता है अक्सर चारों धाम शिव के मंदिर होते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों दिशा में उसकी पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, भारत से बाहर जाओ पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाओ श्री राम से कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी तो कलकत्ता चले जाओ, काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी तो गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, गणेश पूजा मिलेगी तो तमिलनाडु में जाओ कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, परमात्मा की पूजा सारे भारत भर में। भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर न हो। इसलिए उसको कहा देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। अगर श्री राम भगवान थे तो रामेश्वरम में उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? क्योंकि स्वयं श्री राम बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव भक्त था, इसीलिए तो भोलेनाथ कहते हैं। रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रखा, भोलेनाथ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में चले जाओ, वहां आज भी दिखाते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले स्वयं श्री कृष्ण ने भी स्थानेश्वर की पूजा की थी, पांडवों से भी कराई। अगर श्री कृष्ण भगवान थे तो उसने अपनी पूजा क्यों नहीं कराई? वृंदावन में जाओ, गोपेश्वर मंदिर मिलेगा जहां दिखाते बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर के शिव की पूजा की थी। जिन देवियों की हम पूजा करते, ये देवियां कौन है? आरती में गाते हैं शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए, असुर संहारनी शिव शक्तियां हैं, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते, जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों का आइडेंटिटी ही अलग है, एक है ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कार्य भी अलग है, शिव को कहा भोलेनाथ, शंकर को कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है, नाम अलग है, रूप अलग है, कार्य अलग है, ऑक्यूपेशन ही अलग है। जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है, किसी ने ओम नमः शंकराय कहा? एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? भारत में शिवरात्रि मनाई जाती है, शंकर रात्रि कोई नहीं मनाते हैं, ये शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। एक है तो कहना चाहिए। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाए, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था और उन्हें ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी? क्या कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने ध्यान किया? कैलाश माना, जो भी आज कैलाश मानसरोवर होकर के आते वो यही बताते कि कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। वहां बैठकर शंकर ने भी किसका ध्यान किया? आज भी अमरनाथ की यात्रा पर चले जाओ, अमरनाथ पर आप पंडित जी से जाकर पूछेंगे कि अमरनाथ का महत्व क्या, क्यों है इतना, तो वह यही बताएंगे आपको कि अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती जी को अमरनाथ की अमर कथा सुनाई थी। अब शंकर ने पार्वती जी को कौन से अमरनाथ की अमर कथा सुनाई? इसका मतलब अमरनाथ और शंकर एक है या अलग है? स्पष्ट है, अलग है। तो इसीलिए शिव परमात्मा है, शंकर ने भी उसका ध्यान किया। क्यों ध्यान किया? क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था, आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। और ध्यान और एकाग्रता के द्वारा उन्होंने परमात्मा से ये शक्ति प्राप्त किया और तब ये कार्य निभा सके। क्लियर? आगे चले इस्लाम धर्म में। जो मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं। लेकिन जब मक्का जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है। ये पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है। कहानी ये है कि पहले मक्का में भी 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। सबके अपने अपने इष्ट थे, परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। अभी मैं इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, एक बहुत सुंदर बात जानने को मिली कि कहा जाता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे कुरैशी थे, कुरैशी क्लैन से बिलोंग करते थे, उनके जो सरनेम थी कुरैशी थी। और कहा ये कुरैशी कहां से निकले हैं, तो यही कुरैशी कुरुवंशी थे। कुरुवंशी का अपभ्रंश कुरैशी हो गया, जो कुरुवंशी थे। और यही कुरुवंशी जिन्होंने शिव की पूजा की थी, इसीलिए मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा अल्लाह एक है, ये सब अल्लाह नहीं है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, उनको मदीना भेज दिया गया। और जब मदीना चले गए फिर भी एक क्रांति चलती रही कि ईश्वर एक है। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए, काफी मात्रा में जब लोग इकट्ठे हो गए उसके बाद पुनः मक्का आए, काफी लड़ाई झगड़ा होने लगा, खून खराबा हुआ। तब कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो, और ऊपर से ये पत्थर गिरा था। और उसी समय वो 360 देवी देवताओं की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया, ये पवित्र पत्थर की स्थापना की गई। और तब से लेकर के मान्यता यही रही कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी जीवन सफल हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्रा निकलती है। हज पर भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज पर जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो वहां जाता है वो क्या करता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है, 7 बार परिक्रमा करता है। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कोई मस्जिद में भी नहीं होती है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब, मोहम्मद कुरैशी जो कुरुवंशी थे, उन्होंने 7 बार परिक्रमा करना सिखाया। कहां हर एक धर्म की, इसलिए मैंने कल भी कहा था गीता माता है, कि हर धर्म का रूट्स कहां है, हर धर्म की जड़े कहां है, भारत में है, भारत से ही गए। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता, और वो लाइन है हे परवरदिगार, परमेश्वर को कहा गया है हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब लाइट, जिसको भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम कहा। ज्योति का मतलब लाइट, जिसको भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम कहा, मुसलमानों ने नूर कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में तो कहा जाता मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उनको 10 कमांडमेंट्स मिले 2 पत्थरों पर, उस समय अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिस ज्योति को देख करके मोसेस ने कहा ये हो वाह द सुप्रीम लाइट। जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसलिए अपनी अंतिम प्रार्थना में भी जीसस ने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। हे प्रभु किसको कहा? आज भी अगर वेटिकन सिटी चले जाओ जहां सबसे बड़ा चर्च है, जहां पोप की गद्दी है, उस चर्च के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, जीसस की भी प्रतिमा नहीं मिलेगी, अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का सिंबल मिलेगा। जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति का, बात एक ही है या अलग है? और आगे जाए, गुरु नानक देव ने तो बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, एक ओंकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत अजूनी। एक ओंकार निराकार निर्वैर, जो एक सत्य नाम है, वो किसी योनियों में नहीं आता है, वही अकाल मूरत है जिसको काल नहीं खा सकता है। इसीलिए दिखाते गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 तीर्थंकर सभी ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान कर रहे हैं? महावीर ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो भी ध्यान मुद्रा में है, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? कहा सिद्ध शिलापति निराकार स्वरूप। और इसीलिए आज भी जैनी लोग जब दिवाली के दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिन मनाते हैं, उस वक्त अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया, वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? और उस गति को प्राप्त करने के लिए तीन बातें बताते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र। ज्ञान चाहिए, ज्ञान का दिव्य चक्षु हो तब उसका दर्शन करे कर सकते हैं, और चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, और वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिलापति निराकार को ही परमेश्वर का रूप माना गया है, जिसको नाम दिया सिद्ध शिलापति। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन अगर आज भी आप जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर और 3 फुट दूर बैठ के थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसको कहते चिंकुन से की, यानी जो शांति का दाता है, जिसका ध्यान करने से हमारा मन रिलैक्स हो जाता है, इसलिए वो उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं। और आगे जाए, पारसी धर्म में कहा जाता, पारसी लोग जब ईरान से भारत आए तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्वधर्म मान्य पहली कसौटी, ईश्वर किसको कहा जाता है? एक है या नहीं? जो सर्वधर्म मान्य है, भले नाम अलग अलग है, किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, जो भी कहा, साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक। साईं बाबा ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक है, उसी को याद किया। तो सर्वधर्म मान्य देवों का देव, जिसको हिंदू धर्म में देवों ने भी याद किया, वो एक ही स्वरूप है। तो सर्वधर्म मान्य एक है, पहली कसौटी पर खरा उतर गया वो एक ही स्वरूप। वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली का इशारा किया। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ, जिसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है, सर्वोच्च शक्ति जो सभी चक्र से परे है, न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, जो सभी चक्र से ऊपर है। हाँ, क्या बीज स्वरूप? हाँ, बीज स्वरूप जिसको कहा गीता के अंदर के, मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज स्वरूप। बीज स्वरूप, जो बीज है, जो जन्म मृत्यु से परे। चौथे अध्याय में इसीलिए जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप ये ज्ञान सुनाने के लिए हम सबकी तरह पैदा होते हो, तो भगवान ने कहा नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हो, मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, अव्यक्त हूं, पुनर्जन्म रहित, विनाश रहित, शाश्वत हूं। मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, अजन्मा, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं। तब अर्जुन को भी संशय पड़ा और कहा, भगवान मैं आपके दिव्य स्वरूप को देख सकता हूं? और तब उसको बारहवें अध्याय में जब विराट रूप का चित्र दिखाया, उसके पहले कौन सा साक्षात्कार कराया? विराट रूप तो बाद में था, पहला साक्षात्कार कौन सा था? पहला साक्षात्कार था हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप का, जिसका तेज स्वयं अर्जुन सह नहीं सका और कहा, बस करो प्रभु, मैं ये तेज सह नहीं पा रहा। हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदय हो गए हो, इतना तेजोमय स्वरूप। उसके बाद विराट रूप, जिस कृष्ण को देख रहा है उसका जो विराट रूप में जो सारे चेहरे हैं, अर्थात किसी कृष्ण जो अनेक पुनर्जन्म में आने वाला, ये सारे चेहरे उसके हरेक पुनर्जन्म के चेहरे। परमात्मा जो अजन्मा है वो हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप, और जो अनेक पुनर्जन्म, ये दोनों का भेद बता दिया भगवान ने, है ना। और जो सर्वज्ञ है, इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है। तीन लकीर माना जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी, और जिसके पास सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात मनुष्य आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु देने वाले विधाता, दिव्य चक्षु विधाता, जिससे मनुष्य भी कल्याण का दर्शन कर सकता है, इसलिए उसको शिवम कहा। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, जो अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जो रचयिता है, और उसकी हर रचना अति सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा, सत्यम शिवम सुंदरम, एक को ही कहा गया, जो सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है, जो सत्य है वही कल्याणकारी है, वही सुंदर है, तो सत्यम शिवम सुंदर, और वही सर्व गुणों में अनंत है। बिंदु की डेफिनेशन ज्योमेट्री में क्या करते, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, मेजरमेंट लेस, डायमेंशन लेस, इन्फिनिट, इन्फिनिट, गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत एक ही परमात्मा। अब तो अगर आपका बच्चा आपसे ये सवाल पूछे, या आपका पोता आपसे ये सवाल पूछे कि सत्य क्या है, तो अब तो जवाब दे सकेंगे या अभी भी नहीं जवाब दे सकेंगे? हाँ जी,
जो हम आत्मा को प्रकाशपुंज मान रहे हैं, ज्योति मान रहे हैं, जब वो ये कह रहे कि एक चिंगारी हाथ पे टच होती है तो जल जाता है, कोई ज्योति हमारे अंदर है तो वो हमें,
हाँ, क्योंकि वो ज्योति स्थूल ज्योति के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। इट्स पॉइंट ऑफ लाइट, एक लाइट के जैसे सितारा है आकाश में, है ना, तो ये एक भाव है कि उसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, यानी एक पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट का मतलब ये नहीं है कि स्थूल ज्योति की तरह है, चिंगारी की तरह है, नहीं, इट्स अ पॉइंट ऑफ डिवाइन लाइट, इसीलिए उसको डिवाइन लाइट कहा कि जो जलाती नहीं है, है ना। इसीलिए ईश्वर ने गीता में भी कहा प्रकाशों में सूर्य की तरह हूं लेकिन दहकता हुआ नहीं हूं, तभी दूसरी लाइन में कहा नक्षत्रों में चंद्रमा के तरह शीतल हूं, शीतल स्वरूप हूं, दहकता हुआ नहीं हूं। कहने का भावार्थ यह है कि आत्मा भी एक दिव्य प्रकाश है जो दहकती हुई या जलाने वाला प्रकाश नहीं। इसीलिए स्थूल प्रकाश या चिंगारी से दिव्य प्रकाश ऊपर है, तो आत्मा दिव्य प्रकाश है। तो यह था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति के परिचय में 5 बातें पूछी जाती है, आपका नाम क्या है, दूसरा आपका आइडेंटिटी वही है या दूसरा, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस और 5वां प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने ये 5 बातों को देखा। जिस चैतन्य शक्ति का नाम है शिव कहो, भारतवासियों ने जिसको सदा शिव कहा, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो, सिद्ध शिलापति कहो, चिंकुन सेकी कहो, अखंड ज्योति कहो, जो भी कहो। आज जैसे आपको कोई चाचा कहता, मामा कहता, भाई कहता, पिताजी कहता, हर बार स्वरूप बदली हो जाता है, एक ही रहता है, हर बार स्वरूप बदली हो जाता है, एक ही रहता है, एक ही रहता है ना। तो भगवान को भी चाहे कोई गॉड कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, मालिक कहे, स्वरूप एक ही होना चाहिए, बदली हो जाना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और यही बात हमने देखी कि सर्व धर्म ने जिसको स्वीकार किया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, एक ही स्वरूप है, सर्व धर्म मान्य है ना। उसकी आइडेंटिटी क्या है, नूर स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, अखंड ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप, जो भी कहो, एनर्जी। उसके क्वालिफिकेशन 5 बातें, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, ये उसकी क्वालिफिकेशन है। उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर जो परम धाम का वासी है, इसलिए गीता में कहा हे अर्जुन मैं परम धाम का निवासी हूं, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती है, न उसको प्रकाशित कर सकती, वह स्वयं प्रकाशित दिव्य लोक है। और उसका ऑक्यूपेशन यदा यदा ही धर्मस्य, जो ब्रह्मा द्वारा सर्जना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महापरिवर्तन का कार्य कराने वाला वो परमेश्वर है। करण करावनहार कहा, खुद करता नहीं है, इसीलिए अकर्ता भी है तो करण करावनहार भी है। सारी महिमा जो हम गाते हैं उसके पीछे जो भाव है, हर भाव को समझो तो परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब तो कोई कंफ्यूजन है, अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो सेशन के बाद मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।